1892 का भारतीय परिषद अधिनियम एक्ट के पारित होने की घटना है। 1861 के पश्चात भारतीय संविधान का विकास, राजनीतिक असंतोष तथा आंदोलन तथा परिषदों में सुधार की बारी बारी होने वाली एक क्रमबद्ध कथा है। सुधार अनिच्छा से किए जाते थे, जो सदैव अपर्याप्त होते थे, जिससे असंतोष बढ़ता था और अधिक सुधार की मांग होती थी। 1861 के परिषद के प्रति भारतीय असंतोष। 1861 में स्थापित विधान परिषदों में जो अराजकीय तत्व थे, चाहे वे शून्य के बराबर ही थे, देश के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, जो केवल बड़े बड़े जमींदार, अवकाश प्राप्त अधिकारी तथा भारतीय राजा होते थे, जनता की समस्याओं का समझने का दावा नहीं कर सकते थे। 1865 में 85 में राष्ट्रीय कांग्रेस अस्तित्व में आई, भारत के लोकमत को सक्रिय किया ताकि जनता की कठिनाइयों को ध्यान दे सके तथा सुधार के लिए संवैधानिक रूप से परंतु जोर देकर ब्रिटिश संसद पर दावा जा सके। अपने प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस यह चाहती है कि सर्वोच्च स्थानीय विधान परिषद में पर्याप्त संख्या निर्वाचित सदस्य सम्मिलित हो। इसे 1892 के परिषद पारित होने के क्या कारण रहे हैं? डफरिन की भूमिका। डफरिन ने कांग्रेस की गुरुता तथा प्रतिनिधि रूप में महत्व को कम करने का प्रयत्न अवश्य किया, परंतु वैसे कहीं अधिक समझदार था। उसने अपने उस आंदोलन के महत्व को समझा था। अपने गुप्त पत्रों में विधान परिषद का विस्तार करने तथा इदार बनाने का सुझाव अंग्रेजी सरकार को भेजे। उसने अपनी परिषद की एक समिति की भी नियुक्ति की, जो कि प्रांतीय परिषदों के विस्तार के लिए, उनकी प्रतिष्ठा को ऊंचा करने के लिए कार्यक्षेत्र में विस्तार, आंशिक रूप से प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ करने तथा एक राजनीतिक संस्था के रूप में उसके प्रचार करने की योजना बनाया। परंतु उसने उसी समय स्पष्ट भी कर दिया कि भारत में अंग्रेजी नमूनों की संसदीय प्रणाली स्थापित नहीं करना चाहता। समिति की रिपोर्ट उसके अपने निजी विचारों सहित लॉर्ड डफरिन ने लंदन भेज दी। इसमें परिषदों की रचना तथा शक्तियों में परिवर्तनों का सुझाव था। उसका मुख्य उद्देश्य था ऐसे भारतीय भद्र पुरुष को, जो अपने प्रभाव था अपनी अपेक्षाओं से अपने देशवासियों में विश्वास उत्पन्न कर सकता था, जिनकी इतनी बुद्धि तथा क्षमता है कि वे देश के प्रशासकों को अपने सुझाव के द्वारा सहायता प्रदान कर सके, सामने कार्यों के प्रशासन में अधिक भाग लेने का अवसर दिया जाए। 1890 में इंग्लैंड में रूढ़िवादी दल की सरकार ने भारत सचिव लॉर्ड क्रॉस के कहने पर इन सुझावों के आधार पर संसद की लॉर्ड सभा में एक विधेयक रखा। बहुत ही धीमी गति से चलता हुआ यह विधेयक 1892 संसद द्वारा पारित किया गया है। इस 1892 के परिषद के अधिनियम की निम्न धाराएं थीं। इस अधिनियम में केवल भारतीय विधान परिषद की शक्तियाँ कार्यथरचना की बात कही गई थी। केंद्रीय विधानमंडल केंद्रीय विधानमंडल के विषय में इस अधिनियम के अनुसार यह निश्चित हुआ कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कम से कम 10 हो और अधिक से अधिक 16 हो। गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि वह भारत सचिव की सहमति से वह अधिनियम बनाए जिनके अनुसार इन अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जाया करेगा। इस अधिनियम में यह भी सुझाया गया था कि इस परिषद के न्यूनतम 40% सदस्य अराजकीय होने चाहिए। इन अराजकीय सदस्यों में से कुछ चुने हुए थाने मनोनीत होने चाहिए। 1861 के अधिनियम के विरुद्ध एक बड़ा दोष यह लगाया गया था कि परिषद को वित्तीय मामलों पर वाद विवाद करने की अनुमति नहीं थी। अब यह अधिकार अधिनियम के अनुसार विधान परिषद के सदस्यों को सदन में दिए गए वार्षिक वित्तीय विवरण पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दे दिया गया, यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन के मत विभाजन करने की अनुमति उन्हें नहीं थी। सदस्यों को यह भी अधिकार दिया गया कि वे सर्वसाधारण हितों से संबंध रखने वाले विषयों पर कुछ सीमा तक सरकार से तुरंत पूछ सकते थे, परंतु इसके लिए उन्हें 6 दिन की सूचना देनी आवश्यक थी। परंतु विधानमंडलों के विषय में अधिनियम द्वारा अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। बम्बई, मद्रास तथा बंगाल में यह संख्या न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 20 की गई, परंतु उत्तर पश्चिमी प्रांत यानी आधुनिक उत्तर प्रदेश में अधिकतम सीमा केवल 15 निश्चित की गई। यहाँ पर भी सदस्यों को कार्यकारी परिषद के सामने हितों के मामले पर भी प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। इसी प्रकार वे भी सरकारी नीतियों पर प्रश्न पूछ सकते थे, जिनके लिए 6 दिन की सूचना आवश्यक थी, परंतु यदि सरकार चाहे तो कारण बनाया बिना प्रश्नों का उत्तर देने से मना कर सकती थी। इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन पद्धति। इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अंग निर्वाचन पद्धति का आरंभ करना था। यद्यपि इसमें निर्वाचन शब्द का प्रयोग जानबूझकर नहीं किया गया था, केंद्रीय विधान परिषद में अधिकारी वर्ग के अतिरिक्त 10 अतिरिक्त सदस्य होते थे, जिनमें से 5 चुने हुए और राजकीय सदस्य होते थे। इनमें से 4 प्रांत के प्रांतीय विधानमंडलों के और राजकीय सदस्य तथा 5वां कलकत्ता के वाणिज्य मंडल के सदस्य निर्वाचित करते थे। इसके पश्चात इन 5 चुने हुए और राजकीय सदस्यों को गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। प्रांतीय विधानमंडलों के और राजकीय सदस्यों को नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल निर्वाचित करते थे, परंतु निर्वाचन की पद्धति न केवल अप्रत्यक्ष थी, परंतु निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी जाती थी। ये सभी इकाइयाँ एकत्रित होकर सदस्यों को निर्वाचित करती थी तथा फिर इन व्यक्तियों के नामों की सिफारिशें गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों को भेजती थी। गवर्नर जनरल इन्हें मनोनीत कर देता था। इस प्रकार बहुमत द्वारा चुने गए व्यक्ति भी निर्वाचित नहीं कहलाते थे, अपितु यह कहा जाता था कि इसके नाम का मनोनीत करने के लिए सुझाव दिया गया है। इस अधिनियम में धाराओं को शब्दों में व्यक्त किया गया था।